संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में हे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार, उसके अंतर्गत सुख परिणामाधिकार चल रहा है और उसमें 80वीं गाथा जिसमें मोह के नाश का उपाय बताया गया है। क्योंकि पिछली गाथा में कहा था कि भले ही सब प्रकार के पापारंभों का त्याग कर दें और सभी प्रकार के शुभोपयोग से संपन्न हो जाए, पर यदि वो मोह को नहीं छोड़ेगा तो वो शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएगा, है ना? तो शुद्धात्मा को मोह को नहीं छोड़ेगा, ये जो बात बताई थी शुद्धात्मा को मोह को कैसे छोड़े, ये पूछना चाहिए ना। तो वो अब्बा गाथा बता रहे हैं। कल अपना सेमिनार हुआ था संलेखना समाधि मरण का, और सभी विद्वानों ने आगमों के प्रमाण सहित सब बातें बहुत अच्छी तरह से उल्लेख की थी। एक बात उसमें जो मेन आई थी कि सम्यक काय कसाय लेखना संलेखना, संलेखना की ये व्युत्पत्ति समंत आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने की है, और जो वैयाकरण थे, व्याकरण के भी बहुत बड़े विद्वान थे, जैन दर्शन सिद्धांत के तो बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन वो वैयाकरण जैनेन्द्र व्याकरण उन्होंने लिखा था जो सिद्धांत कौमदी की टक्कर का है। भले प्रकार काय और कसाय का लेखन करना माने कृष करना, उसका नाम संलेखना है। वो सब कहते हैं कसाय कम करना, कसाय कम करना, लेकिन कसाय कम होती कैसे है इसकी कोई चर्चा नहीं करता। ये बात अपने लोगों से अनजानी नहीं है। बालभूत पाठमाला भाग 2 में जो कसाय का पाठ है, जो हम 4थी क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, पाठ्यक्रम में रखा है, उसने लिखी है ये बात कि कसाय कैसे उत्पन्न होती है और उसे हम कैसे कम करें। तो उसका जवाब दिया कि जब तत्व ज्ञान का अभ्यास हमें नहीं होता है और हम एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता मानते हैं, ऐसा जानते हैं कि इसने हमारा बुरा किया, इसने हमारा भला किया, दूसरों को अपने भले बुरे का कर्ता मानते हैं, तो कसाय उत्पन्न होती है। उत्पन्न होने का एकमात्र कारण ये है। और नष्ट कैसे हो, तो उसी में लिखा है कि जब तत्व ज्ञान के अभ्यास से हमें एक पक्का नक्की हो जाएगा कि किसकोई परद्रव्य हमारा भला बुरा नहीं करता, क्योंकि दोनों के बीच में अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है। जब किसी ने हमारा बुरा किया ही नहीं तो किस पर क्रोध करें, जब कोई छोटा बड़ा है ही नहीं तो किसके आश्रय से मान करें, जब हम किसी दूसरे से कुछ उपलब्ध कर ही नहीं सकते तो किससे छल मायाचार करें। ये मेरे कहने का अर्थ कषाय को खत्म करने का उपाय वहां बताया है। और हमारे सभी विद्वान आज भी बोलेंगे और कल भी बोले तो वे अच्छी तरह से जानते हैं कि मिथ्यात्व के नष्ट हुए बिना कोई भी कषाय को किसी भी कीमत पर रंच मात्र भी कम नहीं, मन रंच मात्र भी नष्ट नहीं किया जा सकता। कम शब्द बोलने से फिर भ्रम खड़ा होता है, यद्यपि वो कम शब्द गलत नहीं है। कम का अर्थ मंद नहीं होता, कषाय का अभाव है। तो कषाय का अभाव मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी कषाय जाती है और उसके बाद फिर आप प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संतुलन जाएंगी, उनकी भी सब विधि शास्त्रों में बताई है और मोटी मोटी से सब लोग परिचित हैं। अब जो लोग फटाफट हम लेखना ले लेते हैं, लेने वाले ले लेते हैं, देने वाले दे देते हैं और लंगोटी खोलकर महाराज भी बना देते हैं, तो सबको ये पता तो होगा कि कोई संयमी ही सब लेखना ले सकता है। तो वो मिथ्यात्व तो अनंतानुबंधी के अभाव के बिना तो प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान का सार खत्म हो नहीं सकती। तो उनके ऐसे कर देने से क्या होता है, जब तो मिथ्यात्व तो अनंतानुबंधी का नाश नहीं होगा तो उसके बारे में हम क्यों नहीं सोचते, उसकी चर्चा क्यों नहीं करते। अभी तो लोगों को उसका पता ही नहीं है, बता समय तो समझ के ये आटा नहीं खाना, दाल नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, तीन दिन की नहीं खाना, पांच दिन की नहीं खाना, चावल नहीं खाना, इसी में उलझे हैं। ठीक है, शरीर भी कृष हो जाएगा, धीरे धीरे भूख अपने आप ही खत्म हो जाएगी। शास्त्रों में बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि जब तक तुम्हें जो अन्न शुद्ध सात्विक है और तुम लेते रहे हो वो तुम्हें पचता है, तब तक तुम उसका त्याग नहीं कर सकते। करते हो तो फिर वो संलेखना नहीं है। क्या है वो शब्द मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि उसका दुरुपयोग ये गवर्नमेंट भी कर सकती है। ख्याल नहीं ना, ऐसा क्लियर लिखा असदर जी का श्लोक है 1000 वर्ष पुराना। ये शरीर के लिए जो भोजन अभी तक पोषण देता था, जब वो शोषण करने लग जाए तब उसका त्याग कर दो। आपको ये निक्की करना पड़ेगा कि जो आप छोड़ रहे हो वो आपको क्या नुकसान कर रहा था, पच नहीं रहा था, क्या हो रहा था, क्या दिक्कत थी, कब्जियत हो जाती थी, जब पेट साफ नहीं होता था, जुकाम सर्दी हो जाता था, कब बनता था, नहीं छोड़ सकते ऐसा। आप ऐसा पंडित हमने आज तक नहीं देखा कि तुम छोड़ते क्यों नहीं हो, छोड़ो छोड़ो कहने वाले तो बहुत हैं, लेकिन ये कहता तुम छोड़ नहीं सकते। क्यों पीसा गया, छोड़ नहीं सकते। मिथ्यात्व के छूटे बिना कोई कषाय छूटेगी नहीं, तो काय के साथ कषाय भी कम करना है ना, तो देखो कहां कम हो रही। अब ये तुम छोड़ते जा रहे हो, जो मुनियों तक छोड़ते हैं वहां तक, तो तीन कषाय जिनकी खत्म हो गई, वो जो जिसे छोड़ते हैं तुम यहां से छोड़े जा रहे, और यहां कसाय मसा एक भी खत्म नहीं हुई है। ख्याल में आई ना, खत्म करने की हमने सोची ही नहीं है, हमने उसे विधि जानने की कोशिश ही नहीं की है। और हमारे प्रवक्ता विद्वान भी उसकी चर्चा ही नहीं करते। मैं पीछे वालों की आलोचना नहीं कर रहा हूं, आगे वालों को मार्गदर्शन कर रहा हूं। क्या मैंने कल की गोष्ठी पूरी अक्षर अक्षर सा सुनी थी, एक बात और मुझे मार्गदर्शन की कहनी है, अभी और ज्यादा बात नहीं करूंगा, जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं बोलूंगा, नहीं क्या बोलूंगा, कितना बोलूंगा। यदि किताब तो मेरी आपको मिल ही गई है, और यदि मुझे सुनना है संलेखना के बारे में, तो मैं 7 घंटा दिल्ली में बोला था, तो 7 घंटा के कैसेट यहां ऑडियो वीडियो सब मौजूद हैं। मैंने अपने ऑफिस में ऑर्डर दिया है कि जितने भी ये विद्वान प्रवक्ता हैं संलेखना पर बोलें, उन सबको एक एक सीडी भेंट स्वरूप दे दो, तो आपको मिल जाएगी यार। और बाकी लोग भी चाहें तो भी ले जा सकते हैं, और किसी को और तीव्र भाव आ जाए तो वो चाहे तो वो सबको भी बांट सकता है, उसे कौन रोकता है। क्या है, क्या क्या लग, खर्चा क्या आ रहे हैं, होता नहीं कुछ नहीं। मेरे ख्याल से 7 व्याख्यान एक ही सीडी में आ जाएंगे, और वो 20-25 रुपए की होगी बस, लाखों करोड़ों खर्च नहीं होना। और यहां 100-200 आदमी होंगे, परिवार बीच देंगे तो कितने होंगे। मैं भी कर सकता हूं, सब कोई भी कर सकता हूं, मैंने संस्था की तरफ से भी कर सकता हूं, लेकिन जितना विकल्प आया उतना मैंने किया। कुछ सुने, और नहीं तो हमने एक इंतजाम और किया है, 1 नवंबर से वो टीवी पर संलेखना के बारे में ही प्रवचन आएंगे, करीब 15 दिन तक चलेंगे वो, क्योंकि रोजाना 8 घंटा करीब 25 मिनट होता है, तो 15 दिन में वो 7 घंटे हैं, तो 15-16 दिन जितने भी दिन लगेंगे उतने दिन तक वो चलेगी, तो लोग आप उसमें सुन सकते हैं। और अभी ये समस्या थी बंबई वालों को कि वहां सबके घर में टाटा स्काई था, अब टाटा स्काई पे आता नहीं था, इसलिए वो कहते हम क्या करें हम क्या करें। अब टाटा स्काई पे भी आना शुरू हो गया है, कौन से नंबर पे आता है हमारे ऑफिस से पता करके जाना। और मोटानी जी की जिम्मेवारी है कि सारे बंबई वालों को बताएं, तो ये बात पूरी बात मैं कह सकूंगा। अभी तो जो बात मैंने जो बतानी थी थोड़ी वो बताई, अब एक बात मुझे और बतानी है, वो क्या है कि हमको एक मौका मिला है कि गवर्नमेंट से आग्रह करके आंदोलन करके मुकदमा लड़के तो हम गारंटी से जीतेंगे ही, ये मुझे पक्का भरोसा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी संलेखना का अधिकार से हम पूरी तरह वंचित हो जाएं। अभी कलयुग इतना पुराना, अभी पंचम काल का अंत समय नहीं आया है, इसमें कोई शंका की बात नहीं है, और उसमें हम मन वचन काय से पूरी तरह साथ हैं, मैंने सब मुमुक्षुओं को उसमें साथ देना है क्या। लेकिन हमको एक दूसरा काम करना है, मैं अपने विद्वानों से कहता हूं जितने भी यहां मौजूद हैं, होंगे 250-300, ये कहना चाहता हूं मैं कि ये मौका मिला है तुम्हें तो इस पर ज्यादा बोलो। किस पर, कि ये आफत हमें आई क्यों, क्योंकि भविष्य में नहीं आई, आई आफत को तो समाज के नेता निपटेंगे, और भविष्य में आफत नहीं आए ये काम आपको करना है। हम कैसे करेंगे, कि ये इसलिए आई, किसी को लेना देना नहीं है कि हम घर में क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं, और कब खाते हैं और कब नहीं खाते हैं, और हमने किस दिन खाया और किस दिन नहीं खाया, आज तक तो कोई देखने आया नहीं, और लाखों गरीब लोग बेचारे बिना भोजन के मर जाते हैं, और अखबार चिल्ला चिल्ला करके बताते हैं टीवी चैनल कि बिना भोजन की वजह से वो मर गए, किसी जज की कान उस पर नहीं देंगे, किसी आदमी की गवर्नमेंट की चिंता उनकी नहीं हुई कि बेभूखों ना मरे, और ये 2-4 करोड़पति ने छोड़ दी होगे एक आध दिन भोजन, तो इनकी इतनी चिंता हो गई उन्हें करोड़पति भूखों ना मर जाएं। क्या ऐसे देवा क्या? लेकिन मैं ये कहता हूं कि कौन आज तक हमारे पास नहीं आया कि हमने किस दिन खाया और किस दिन नहीं खाया? आपके घर आया कोई? अरे भाई, कोई किसी को पूछता नहीं कि उसने क्या खाया, कब खाया, कब नहीं खाया। हम चाहे तो कुछ छोड़ दें ना, कोई नहीं पूछता। लेकिन हमने बड़ा प्रदर्शन किया, जुलूस निकाले, बड़े बड़े पत्रकारों को बुलाया, फोटो छपाए, टीवी पर इंटरव्यू दिए, कह वो कह मैंने 4 दिन से नहीं खाया, मैंने 10 दिन से नहीं खाया, मैंने इतने दिनों से अनाज नहीं खाया, मैंने गेहूं नहीं खाया, इतने दिनों से दूध नहीं खाया, दही नहीं खाया, और ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो लग रहा 24 घंटे, सारी मशीनें लग रही हैं, उस पर आ रहा है कितना ब्लड प्रेशर है, कितनी पल्स है, कितना डायबिटीज है, सब। वो पढ़ने वाले कहते हैं कि सब ठीक है, भोजन नहीं किया, 2 बार में प्रमाण मिल गई ना पक्की कि सब ठीक है और भोजन नहीं किया। तो स्वस्थ आदमी जिसके सब ठीक हो, उसे भोजन त्यागने का अधिकार है ही नहीं संलेखना में, तो क्या को भोजन त्याग किया? अपने धर्म के हिसाब से वो संलेखना सही है क्या? अब प्रचार कर रहे हो, खूब विज्ञापन दे रहे हो, एक एक पेज के पूरे फुल विज्ञापन, तो उससे ये आफत आई है। संलेखना बिल्कुल व्यक्तिगत चीज है, पड़ोसी को भी कानों कान फर्क पता नहीं पड़े ऐसी चीज है, क्योंकि सारे पड़ोसी इकट्ठे हो जाएंगे तो बेचारा वो शांति से मर भी नहीं पाएगा। सब इतना उपदेश पिलाएंगे क्या? शांति से उसे रहने नहीं देंगे, आवाज लगाएंगे, नारे लगाएंगे, जिंदाबाद जोर जोर से गाएंगे, तो तेरे को कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। महोत्सव है सब, और महोत्सव में खाना पीना नहीं हो, गाजे बाजे नहीं हो, जुलूस नहीं हो, हैं? तो काहे का उत्सव? मैंने अपनी छोटी सी किताब में सब लिखा है। मैं ये विद्वानों से कह रहा हूं कि उस हिस्से को गहराई से पढ़ो, तुम्हारे पास तर्क और युक्तियां बहुत तुम्हें मिल जाएंगी, और यहां तुम चाहे बोलो चाहे नहीं बोलो, वो यहां तो मैंने ही बोल दिया और बोल दूंगा, लेकिन गांव गांव में जाना है तो वो बात लोगों को सिखानी है कि तुम हम एक दफे तो निबट लेंगे, अब दोबारा आफत नहीं आए, इसके लिए इस संलेखना लेने में इस विज्ञापन की प्रचार की रंचमात्र आवश्यकता नहीं है। अच्छा होता है प्रचार होता है किसका? जिसने संलेखना ली उसका किसका प्रचार होता है? कि जो लेगा उसी का होगा। वो तो बेचारा घंटे 2 घंटे में अगले भव में जाने वाला है, अब उसे इस भव से क्या लेना देना है? इसमें उसका कितना अखबार में नाम निकला, कितना फोटो निकली, क्या निकली है? अच्छी हट्टे कट्टे की फोटो नहीं निकली, अब अधमरे की, रोते रोते जैसे चेहरे की, अब ये फोटो निकल के उसके निकलवाने में क्या रस है? नहीं होना चाहिए। ये चीज हम बताएं, यदि 1% भी समाज में से इस प्रवृत्ति को हम रोक सके और सही संलेखना का स्वरूप हम बता सके कि संलेखना सम्यक दर्शन के बिना नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि 14 वृत्त बताए हैं, 12 तो वृत्त हैं, 5 अणुवृत्त, 3 गुणवृत्त, 4 शिक्षावृत्त, 12 हो गए, और 1 सम्मदर्शन और 1 संलेखना, 14 हो गए। इन 14 के 70 अतिचार तत्वार सूत्र में है, रत्नाकरण साहबकाचार में है, 6 डाला में है, पुरुषा सिद्धि उपाय में है, जितना साहबकाचार है सब में है। तो बिल्कुल उन वृत्तों के साथ ही ये भी एक वृत्त है, और क्लियर लिखा है कि वो सम्मा दर्शन के बिना ये वृत्त दूसरी प्रतिमा है, और सम्मा दर्शन दर्शन पहली प्रतिमा है, तो पहली के बिना दूसरी कैसी हो जाएगी? अभी तो किसी की कोई प्रतिमा प्रतिमा नहीं है। मैं लोग कह रहे हैं तुम्हारी कोई प्रतिमा है, अभी तो नहीं है, आप कहो तो जितनी हम ले लें, कितने में आती है, इस फटिक मणि की ले लें, सोने की बनवा लें, जिसकी कहो उसकी प्रतिमा बनवा सकते हैं, ये पैसे वाले क्या नहीं कर सकते हैं, क्यों शिकर जी जी। अभी सचमुच इसे प्रतिमा माने अर्थ नहीं आता है समझ में, कि दिगंबरों में कोई प्रतिमा होती है, ये जिसका पता नहीं चला है जिसको, क्या अब वो क्या संदेह ना लेगा, क्या लेगा, क्या हरे को ले, हरे को ले, हरे को लेने का अधिकार है, कितना ने लिया, कितना सम्मान दृष्टि से, कितना थे, क्या थे, क्या थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि अब उनसे सरकार से हमको लड़ने की ज्यादा, कानूनी मानून वकीलों ने क्या किया, ये वे जो धर्म का स्वरूप नहीं समझ रहे हैं ये सब भाषण उन्हें देने दो, पंडित लोग इस भाषण में कुछ इसकी चर्चा नहीं करेंगे, कम से कम यहां तो नहीं करेंगे, क्या न विद्वत परिषद वाले न स्नातक परिषद वाले। थोड़ी सी बात मैंने की है और मैं आज अध्यक्ष हूं उसका, तो भी मुझे बाद में मिले कि नहीं मिले, अध्यक्ष को तो ऐसा ही होता है, जब पूरा समय खत्म हो जाता है और 5-10 मिनट लेट हो जाते हैं तब अध्यक्ष को बोलते हैं कि अब बोलो तुम, क्या बोलो, क्या बोले, बोलो आप, क्या करें। कल भगवान जी का ऐसा ही हुआ था ना, तो मैंने इन लोगों से कहा है कि जितने वक्ताओं को बुलवाना हो बुलवा लो, 3:30 बजे सब खत्म हो जाना चाहिए, 8 घंटा मेरे लिए रिजर्व रखना अंत में, नहीं तो अध्यक्ष को यह भी अधिकार होता है कि वो सबसे पहले बोल ले। बहुत मार्मिक चीजें हैं सचमुच। कल मैंने सुना, सबका बहुत बढ़िया था, लेकिन मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि उनमें से एक भी व्यक्ति ने मेरी किताब को आद्योपांत पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, इतना पक्का मुझे उससे आइडिया हो गया, क्योंकि ऐसी बातें बोली कि जो उसमें बहुत स्पष्ट साफ साफ लिखी हैं। क्या यदि वो एक दफे पढ़ ली होती तो मेरे में इतनी अश्रद्धा नहीं है कि वो ऐसी बात बोले, उसको वो तो आगम के आधार पर लिखी है मैंने, वो स्पष्ट थी, तो उनके बारे में गलत वो कैसे आ सकते थे कमेंट्स, क्या फिर बात मैं नहीं बताऊंगा ना, मुझे अब ज्यादा याद भी नहीं है, ज्यादा लंबा ना हूं ना, अपनी 80वीं गाथा चलनी है, बोलो ये 80वीं गाथा।
जो जान दी हरे हंतम दवत गुणत पजय तेम सो जान दी अपाड़म भो खलु जादित लयम द्रव्य गुण पर्याय से जो जानते अरहंत को वे जानते निज आत्मा द्रग मोह उनका नास हो।
देखो इसके हेडिंग लिखा ना, ऊपर हेडिंग लिखते हैं ना गुजराती में मथालो, क्या लिखा है, अथ कथम मया विजेतव्या मोह बाहिनी। अब मुझे मोह की सेना को कैसे जीतना, इसके उपाय की आलोचना करते हैं। आलोचना करते हैं माने बुराई करते हैं, नहीं होता है लोग में मानते ना, तो वो तो आलोचना बहुत करता है। आलोचना करते हैं माने गंभीरता से विचार करते हैं उस पर, क्यों, क्योंकि पिछली गाथा के अंतिम पंक्ति पढ़ो संस्कृत की, पिछली गाथा की, अतो मया मोह बाहिनी विजयाय बद्धा कक्षेयम। अब मैंने मोह रूपी सेना को जीतने के लिए कमर कस ली है। अब ये दोनों के बीच में जो 79 है ना 79 ये लिखा काय को लिखा, इसे हटा दो ना। अब दोनों वाक्यों को एक साथ पढ़ो, क्या क्या समझ में क्या कह रहा हूं, देखो, अब मैंने मोह की सेना को जीतने के लिए कमर कसी है, ये आई अब इसकी अगली, यह वो मोह की सेना कैसे जीती जाए, अब इसके बारे में विचार करते हैं। मतलब कितने संधि जुड़ती है, पिछली गाथा से संधि कैसे जुड़ती है, ये मोह की सेना से कैसे जीतना। तो मोह के दो भेद हैं, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। तो ये 80वीं गाथा में दर्शन मोह से तो जीतने का उपाय बता रहा है। क्या किसी भी व्यक्ति को बिना संलेखना के मरण नहीं करना चाहिए। घबराना नहीं, मैं उस सब्जेक्ट पे दोबारा नहीं जा रहा हूं। नहीं करना चाहिए ना। और वो संलेखना समाधिष्टि के होती है। देखिए ना, जिसकी मोह की सेना जिसने नहीं जीती है उसके होती नहीं है। तो करना चाहिए ना, कि वो तो मरने के अंत समय में की जाती है। तो तेरा दिमाग बहुत चलता है। मारणांत की संलेखना जोशिता, मरण के अंत में होने वाली संलेखना को प्रीति पूर्वक सेवन करना चाहिए। लिखा ना, तो आएगा जब मरण, जब देखेंगे, अभी से हमें काहे को परेशान करते हो। अंत ही समय में करना है ना वो प्रदीप जी। तो कहते भैया, वो अंत समय में करना है, वो समना दर्शन है ना, जिसके बिना वो होती नहीं है, वो पहले किया जा सकता। वो काम अभी से निपटा लो ना, जब स्वस्थ हो बढ़िया, जब मरण लगो तब वो निपटाना। तो मरण लगेगी चिंता तो अभी से कर रहे, और जो उसके पहले निपटाना जरूरी है, जिसके बिना वो होती नहीं है, उसकी बात नहीं करते। एक गाथा उसकी बात कर रही है। पहले 80वीं गाथा सुनो, फिर संलेखना की सुनना। मोह की सेना को जीतने के लिए क्या उपाय करना, अब इसकी आलोचना करते हैं, माने इस पर गंभीरता से विचार करते हैं। क्या बात कही, कि जो अरहंत भगवान को द्रव्यगुण पर्याय से जानते हैं, वे अपने आत्मा को जानते हैं, और जो अपने आत्मा को जानते हैं उनका मोह नाश को प्राप्त होता है। बिल्कुल सीधी सरल भाषा है, प्राकृत में बिल्कुल जो मैंने बोला, हिंदी में भी बिल्कुल ऐसी ऐसी भाषा में लिखा है। देखो एक एक शब्द बोलूं, जो जान दी अरहंतम, अब जो जान दी माने जानता है, अरहंतम माने अरहंत को, फिर दब्बत गुणत पज्यत तेहिम, द्रव्य से गुण से और पर्याय से, द्रव्यत्व से गुणत्व से और पर्यायत्व से, सो जान दी अपाणम, सो वह आत्मा को जानता है, मोह तस् जाति लयम, उसका मोह लय लय हो जाता है, माने क्षय को प्राप्त होता है। मैंने सीधी सहायक सम्मान की बात कर रहा है। गुरुदेव कैसा अर्थ करते थे इसके, कहते को क्षयम लिखा, उपसमम नहीं लिखा, क्षयोपसमम नहीं लिखा है? ये करुणानियों वाले के क्या बात करते हैं, पहले तो सबसे उत्तम सम्मत होता है, सारे सम्मत तो पहले होता ही नहीं है। कि बैठो बैठो, अभी तुम्हें जरूरत नहीं है तुम्हारी है? गुरुदेव क्या जवाब देते हैं, कि खबर छे, बड़ी खबर छे, लेकिन उनका जो उग्र पुरुषार्थ ऐसा स्फुरायमान हो रहा है कि वे उपसम क्षयोपसम की बात ही नहीं करना चाहते हैं, वे तो सीधे क्षय की बात करना चाहते हैं, जो होता होगा हो जाएगा, लेकिन हम तो क्षय की बात करेंगे। क्यों, क्या समझ में आया ना, हम कोई दो नंबर की बात नहीं करेंगे, हम कोई दो नंबर का काम करने की बात नहीं करेंगे, हम तो मोक्ष में जाने की बात करेंगे। कि जाएंगे तो है ही नहीं, जाने तो सुर्ग ही है, कि जाना होगा, जहां जाएंगे या चले जाएंगे, सुरग में नरक में हमें कोई बात नहीं है, लेकिन हम बात तो मोक्ष की ही करेंगे, मोक्ष के मार्ग का ही उपदेश देंगे। उपदेश ही मोक्ष के मार्ग का होता है। कि हम छोटे से पंडित, हम काय का मोक्ष का मार्ग का देंगे, वो तो बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े उनकी बात है तीर्थंकरों की। भैया तुम उन्हीं की बात सुना रहे हो, तुम अपनी नहीं कह रहे हो। प्रवचन करने के पहले प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। अस्य मूल ग्रंथ कर्ता रा सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेसान वचनानुसार वहां साध्य। इतनी लंबी चौड़ी प्रतिज्ञा वाक्य सुनाना पड़ता है कि तुम हर साल प्रतिज्ञा लगाते हो इन लोगों से खड़ी करके कि हम सब जिंदगी भर तत्व का विचार करेंगे, कि हर साल लगाते हैं बहुत लेट होता है। ये तो आचार्य ने तो रोजाना की क्या आज्ञा दी है, क्यों रोजाना का दिया है? क्यों बोल बोल दिया कि नहीं रोजाना का दिया है? अरे क्या है रोजाना का? नहीं, दिन में जितनी बार प्रवचन करो उतनी बार, रोजाना में एक बार नहीं कि सुबह प्रवचन में मैंने बोल दिया था अब शाम के प्रवचन की क्या जरूरत है ना कि हर समय तुम एक प्रतिज्ञा करके गद्दी पे बैठते हो, नहीं भी बोलते हो तो भी उसका अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए ये मत सोचो कि हम छोटे पंडित मोक्ष की बात कैसे करें, तुम अपनी बात कर ही नहीं रहे, तुम अनंत परमात्मा की तरफ से बोल रहे, तुम उसके प्रतिनिधि हो, तुम्हें पता ही नहीं है तुम क्या चीज हो। जिसको अपना की महिमा नहीं आएगी उसे जगत की क्या महिमा आएगी? जो अपने को नहीं जानेगा वो जगत को क्या जानेगा? वो तो सीधी बात कर रहे हैं, मोह का नाश कैसे होगा, क्या बताया है इसमें, पूछ लूं किसी से? नहीं पूछूंगा, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरी भी इज्जत जाएगी। ये क्लियर लिखा है, देखो, जो जानदि अप्पाणम मोहो खलु जादि तस्य लयम्। जो आत्मा को जानेगा उसका मोह नष्ट होगा, ये नहीं लिखा कि जो अरहंत को जानेगा उसका मोह नष्ट होगा, सब यही बोलते हैं, सब यही बोलते हैं अरहंत को जानेगा मोह नष्ट होगा, अरहंत को जानेगा उसको। लेकिन इसमें कहां है, गाथा में कहां है? बोलो, नीचे की पंक्ति में स्पष्ट लिखाना कौन सा, कि जो आत्मा को जानेगा उसको मोह नष्ट होगा। मोह नष्ट होगा माने सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि है भाई साहब, हमें क्या लेने देना मोह का, हम किसी का नाश करने के लिए बैठे हैं? हमें कोई नाश माश नहीं करना है किसी का, क्या वो तुम्हारा अपना शत्रु है या हमारा कोई शत्रु नहीं? आत्मैव आत्मना शत्रु, अपने आत्मा का हम ही शत्रु हैं, हमने ही कुछ नहीं किया, हमने ही नहीं देखा तो हमने अपना आहित किया है। तो मोह का नाश किसका होगा? जो आत्मा को जानेगा उसका। फिर अरहंत की आदत बीच में काहे को लगाए ले आए कि भैया आत्मा को कौन जानेगा कि जो अरहंत को जानेगा, और कैसे जानेगा? द्रव्यत्व से, गुणत्व से और परायत्व से जानेगा वो उसका, समझे ना, वो उसका फल क्या है? मोह का नाश नहीं, वो तो परद्रव्य है, परद्रव्य के आश्रय से कि मोह का नाश होता है, क्योंकि वैसे ही हमारा आत्मा है ना, तो हमें आत्मा के जानने की वो विधि है। क्यों है वो मोह की अरहंत की, अभी अपन पूरी बात करेंगे। जिसमें मैंने कहा 25 पेज लिखे हैं मैंने, हो सकता है इसी गाथा में खत्म हो जाए अपना सिले, और उसके बाद फिर देवलाली में नंबर आए, क्योंकि मैं दो दो चार दिन को यहां हूं तो कितना दिन में व्याख्यान कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, हेलो, फिर देवलाली आ जाना, करोगे मोटा नहीं सबकी व्यवस्था रहने की, बढ़िया, नहीं हो तो होटल खरीदना, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, कोई हिंदी वाला मेरे पास नहीं आना चाहिए कि हमारे ठहरने की व्यवस्था अच्छी नहीं हुई है। अब आ जाना तुम सब लोग निश्चिंत हो गए, है ना। देखो सुनो, वो द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व से एक क्यों लिखा, इसकी क्या जरूरत थी? इतना पर्याप्त नहीं था कि जो जानदि अरहंतम सो जानदि अप्पाणम मोहो खलु जादि तस्य लयम्। ये द्रव्य गुण पर्याय से क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि हम तो अरहंत को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तुम जानते हो उनमें 46 गुण होते हैं। अच्छे अच्छे नहीं जानते होंगे, और हम जानते हैं कि वे 40 गुण को अपना संभाल के रखो, हमें उनसे जानने से कुछ नहीं होगा, उनकी परीक्षा करें थोड़ी बहुत। 40 गुण में एक गुण ये भी है कि ठंडी ठंडी सुगंधित बढ़िया हवा चल रही। बोलो, भगवान समोसा विराजमान थे तो वहां शीतल मंद पवन बाजार चलती थी। ये एक गुण ये भी है, एक गुण ये भी है कि जिस सिंहासन पर बैठे थे, अब वो क्या है क्या बताएं आपको, बहुत ही एकदम ये मन सोने चांदी का रत्नों से जड़ित बना हुआ था सिंहासन छविदार, और जिस पेड़ के नीचे बैठे थे वो अशोक नाम का पेड़ था, उसे शोक नहीं होगा, किसी को नहीं होगा शोक, ये एक इंद्री है, पेड़ तो एक इंद्री ही होता है, उसकी तो जो दुर्दशा होगी सो होगी, कोई पेड़ अशोक नहीं हो सकता, कोई सैनी पंचेंद्री ही अशोक हो सकता है, एक इंद्री अशोक होगा, तीन छत्र सिर पर जने, तीन छत्र माथे पर, एक पे ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तीन तीन लग रही है, ये है वो तुम्हारे 40 गुणों में, तो हैं 40 में क्या नहीं, कि मैं गप मार रहा हूं, ये है पढ़ लेना एक दफे देख करके। अब की आप बिरसा में प्रशिक्षण शिविर चलेगा ना, तो जितने भी हमारे प्रशिक्षण के अध्यापक आएंगे उनको हम सब पढ़ाएंगे, एक एक याद कराएंगे, सब परीक्षा में आएंगे, देख लेना। अब की बार मैं पेपर बनाऊंगा, क्या एक उन गुणों में ये 8 प्रातिहार हैं, आप जानते हो 8 प्रातिहार तो कौन कौन होते हैं, वे 8 प्रातिहार भी उन 40 में हैं। अब 8 को कम करो और 4 अनंत चतुष्टय को कम करो तो फिर 34 ही रह जाते हैं, और फिर 34 में क्या है, 10 जन्म के अतिशय, जब उनका जन्म हुआ था तब कुछ ऐसी गजब की चीजें हुई थी, क्यों तो वे अतिशय तो जन्म के हैं, तो भगवान का जन्म होता नहीं, तो अनंत का जन्म होता नहीं, तो अनंत के कैसे हो सकते हैं। और 14 देवकृत हैं, देवकृत हैं तो किसके होंगे, देवों के, जिसका जो करता होता है वह उसी का होता है, लोक में ऐसा नियम है ना कि जो जिसका करता होता है वह उसी का होता है, तो देवों के थे, उसमें अरहंत का क्या लेना देना। अब अकेले 4 बचे, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत सुख और अनंत वीर, तो ये द्रिगुण पर्याय में आ जाएंगे। अभी द्रव्य की बात करेंगे, गुण की बात करेंगे, तो केवल ज्ञान आ जाएगा ना, केवल दर्शन आ जाएगा ना, अनंत सुख ये भी गुण है ना, ये आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, उसमें ये आ ही जाएंगे। हमने जो कहा है कि द्रव्य गुण पर्याय से जानो, कुछ 40 गुणों से नहीं जानना है, 34 अतिशयों से नहीं जानना है। अतिशय जानते हो किसे बोलते हैं, सफेद झूठ को अतिशय बोलते हैं, अग्नि जलाए तो वो सही है और नहीं जलाए तो वो अतिशय है। अब अग्नि नहीं जलाए सही है कि झूठ, तो सफेद झूठ है ना, कि जो गजब गजब जिसे बोलते हो आप, कि जो सहज भाव से होता नहीं है उसको बोलते हो, तो बोलिए। अकबर के जमाने में एक सेमिनार हुआ बहुत बड़ा सब धर्मों का, कि सब धर्म वाले आएं और वे सिद्ध करें कि उनका धर्म सच्चा है। सब धर्म के प्रतिनिधि इकट्ठे हो गए और उनने कहा कि जो अपना हाथ करे और उसके हाथ पर हम अग्नि रखेंगे तो जिसका हाथ जलेगा नहीं वो सच्चा और जिसका हाथ जल जाएगा वो झूठा। ये फैसला है, नियम बना दिया, ये परीक्षा होनी थी सच्चे झूठे की। एक आदमी खड़ा हो गया, दुबला पतला, टोपी लगाए खड़ा हो गया कि हमको स्वीकार नहीं है। क्या स्वीकार नहीं है? कि तुम्हारी एक कसौटी। क्यों? कि आग जलाएगी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। वो नहीं जलाएगी तो क्या क्या अनर्थ हो जाएंगे तुम्हें पता है? कल से हमें ठंडी चाय पीनी पड़ेगी, कच्ची रोटी खानी पड़ेगी। अग्नि अपने जलाने का काम नहीं करेगी तो दुनिया में प्रलय आ जाएगा। माने हर वस्तु अपना स्वभाव जो है वो छोड़ दे तो क्या हो गया? प्रलय नहीं आएगा। और कभी ये संभव नहीं है, इसलिए हमें ये कसौटी स्वीकार नहीं है। बाकी के धर्मों ने कहा कि कोई को वो जड़ी बूटी मालूम होगी तो अपने हाथ पैसे मलमला के ले आएगा तो वो सच्चा सिद्ध हो जाएगा। उसकी सच्चाई से कोई लेने देना नहीं है। जिसको जड़ी बूटी का नाम पता नहीं है और जिसके पास वो जड़ी बूटी नहीं है वो जल जाएगा, उसका धर्म झूठा हो जाएगा। कैसी कसौटी है? हम नहीं मानेंगे। वो कौन होगा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको जवाब मिला कि नहीं मिला? मैंने एक बहुत बड़ा उपन्यास पढ़ा था बहुत समय पहले किसी ने, अब मैं नाम भूल गया हूं उसका और लेखक का नाम भी भूल गया, उसमें ये बात लिखी थी क्या कि एक आदमी ने ऐसा कहा था और वो आदमी कौन होगा? वो जैन होगा, असली जैन होगा। हम तो फटाफट लोगों के पास दौड़ेंगे, भैया तू कर सकता है, तू कर सकता है, कोई महाराज कर सकते हैं, जादू कौन कर सकता है ये काम, जल्दी बताओ नहीं तो हमारा धर्म झूठा सिद्ध हो जाएगा। हम अपने धर्म को उन अकबर से सर्टिफाई कराएंगे सच्चा, जो काला अक्षर भेद बराबर जैन धर्म के बारे में नहीं रहता। हमसे नहीं पूछेंगे कि तुम्हारा धर्म सच्चा है कि नहीं है, हम सिद्ध करेंगे तो नहीं बताएंगे। क्यों? वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं, हम तो ये मानते हैं। और अग्नि का स्वभाव जलाना है किसको? दाह्य को। शास्त्र में लिखा ना, जैसे ज्ञान का स्वभाव क्या है? जानना। किसको? आगे आगे आवाज आ गई, दिवस सही। जैसे ज्ञान का स्वभाव गेयों को जानना है, ऐसे ही अग्नि का स्वभाव, क्योंकि ये दाहक है तो दाह्य को जलाना है। जो दाह्य नहीं है उसे नहीं जलाएगी। कौन कौन नहीं है दाह्य बताओ? सब जल दाह्य है, सब जलने वाले हैं, किसी का हाथ अदाही नहीं है। क्या ये अभ्रक अदाही है? यदि ऐसे पदार्थ इस जगत में नहीं होते कि जो अग्नि से जलते हैं तो कच्ची रोटी खानी पड़ती और सब जल जाते तो भी अनर्थ हो जाता। रेल का इंजन कैसे बनता? क्योंकि उसमें अंदर से अग्नि जलाते हैं और जिस चीज का बनाते वो जल जाती। वो अभ्रक, वो पदार्थ ऐसे हैं कि जो अग्नि जलाओ तो भी नहीं जले, तो उन्हें दाह्य नहीं कहते हैं। तो अग्नि किसको जलाती है? दाह्य को। ज्ञान किसको जानता है? तो अब लगाओ इसमें अब व्यतिरिक कि जो गे नहीं है उसे नहीं जानेंगे। क्यों? ठीक है। अरे ऐसा कोई जगत में है ही नहीं कि जो गे ना हो। जितने भी पदार्थ हैं वो सब उनमें गे हैं, इसलिए वो सबको जानते हैं। फल में गे नहीं आए तो दाई पदार्थ कौन? वो अभ्रक होगा जो वो रेल के इंजन में लगा। नहीं नहीं, तुम्हारे घर में जो लकड़ी कोयला कंडा तुम जलाते हो ना, उसमें भी कुछ परमाणु दाही हैं और कुछ परमाणु अदाही हैं। जो वो राख बची रहती है ना, वो अदाही है, वो नहीं जलते हैं। वे परमाणु सब पड़े रहते हैं वहीं नीचे। वो अग्नि चाय जितनी जलाओ, राख को जला के बता दो तुम। क्यों? कि वे अदाही हैं, उनको नहीं जलाएगी। तो वस्तु का स्वरूप क्या है उनको द्रव्य गुण पर्याय से जानो, इसका मतलब यह है कि अतिशयों से नहीं जानो। कैसे तुम, मैं एक अर्थ का कार्य कर रहा हूं, क्या लेना देना जबरदस्ती उन अतिशयों की धुनाई करने बैठ गए, लेकिन इसका अर्थ नहीं है ये। बोलो प्रदीप जी, कि द्रव्य गुण पर्याय से जानो, तो हमें तो तुमने अच्छे पढ़ाए, अब अतिशयों से नहीं जाने, हमारी तो सारी महिमा उन्हीं से है। जो भगवान को चमत्कार नहीं बताए, हम तो उन भगवान को पूछने के लिए तैयार नहीं है। पारसनाथ जिनेश्वर पूजू रवि व्रत के दिन माही, सुख संपत्ति बहु हो ये तो रत ही आनंद मंगल गाही। कब से बोलते आ रहे हैं, रविवार के दिन कितनी दफे ये पूजा की है, ऐसा एक भी बचा है कि जिसने ये पूजा नहीं की हो? वो कोई बचा होगा आज तक तो अब नहीं बचेगा। क्या क्या बोल रहे हैं इसका, क्या बोल रहे हैं, सब सत्य है कि पारसनाथ भगवान की रविवार के दिन पूजा करोगे क्यों तो सुख संपत्ति तुरंत तत्काल सुख संपत्ति होगी, होगी तुरंत ही, देर नहीं होगी बिल्कुल भी, नो डिले, और आनंद मंगल हो जाएगा बस खत्म। तब मेरे मन में प्रश्न आया कि पारसनाथ की करेंगे तो सब सुख संपत्ति मिलेगी, पर हमने नेमिनाथ की करी तो नहीं मिलेगी, तो काय को मंदिरों में इनकी मूर्ति रखी है, फिर सब पारसनाथ पारसनाथ की रखे, सीतामढ़ी ने पारसनाथ सुन लिए, उन्हें नहीं चाहिए। और मैं विदेशों में जाता हूं, वहां दिगंबर सीतामढ़ी के मंदिर एक साथ बनते हैं, तो वहां दो प्रतिमा विराजमान करने का मौका होता है, तो एक पारसनाथ की और एक महावीर की विराजमान की जाती है। कल में आई ना, तो श्वेतांबर किसी कीमत पर महावीर को नहीं लेते, पारसनाथ को लेते हैं, नक्की है, तो पक्का है, नहीं तुम गड़बड़ करोगे तो मैं बोली बोल लू, और वो किसी कीमत पर छोड़ेंगे ही नहीं, तुम्हारे पल्ले तो महावीर ही पड़ेंगे बेचारे कि जो कुछ करते नहीं है। सब जगह पारसनाथ सीनियर है ना, और महावीर जूनियर है, तो वो तो सीनियर है, वो सीनियर बनते रहते हैं, ख्याल में आई ना। तो महावीर की पूजा करोगे तो नहीं मिलेगी सुख संपत्ति, वो पारसनाथ की लिए रिजर्व है क्या? क्या 24 तीर्थंकरों में ऐसा कोई भेद है? और सोमवार के दिन करोगे तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो भी छुट्टी के दिन, संडे को ही, रविवार को ही मिलेगी, ये कैसा भाई समंदर में कि टाइम से भी बंधा है, हैं? वो पारसनाथ की करोगे, अभी पारसनाथ की भी कहां है पूरी, पारसनाथ तुम्हारे गांव में जो बैठे हैं उनसे काम नहीं चलता है। मक्षी जी के पारसनाथ भक्तों की रक्षा कीजिए, क्यों तुम्हारे भक्तों की रक्षा, हमारे यहां के टोडरमल स्मारक के पारसनाथ कर दें तो तुम्हें कोई तकलीफ है ना, कॉर्नर में ऊपर अम्बेडकर का बनाया ना ऊपर पारसनाथ, क्यों ये यहां पर भगवान पारसनाथ की पूजा करता है, अर्घ चढ़ाता है, जरा से चावल एक आध चिटक एक आध लौंग लौंग ले ली, इतना सा अर्घ होता है, फिर उस पर पूरा एड्रेस लिखता है कि मक्षी जी के पारसनाथ आए अर्घम नरपाम की स्वाहा, उसे डर लगता है कि सामने वाले न हड़प जाए। सही एड्रेस लिखो कि वही पहुंचे, तो पारसनाथ में भी फर्क पड़ गया। क्यों पारसनाथ पारसनाथ में भी फर्क पड़ गया कि नहीं पड़ गया, हैं? यहां के नहीं, यहां के नहीं। अब देखो ये जितने पारसनाथ पूजे और जितने झगड़े हैं वो सब पारसनाथ का ही, पारसनाथ को हमने रक्षा करने का डिपार्टमेंट सौंपा, रक्षा मंत्री हैं वे, समझ में आई ना, वो जितने झगड़े हैं वो पारसनाथ के तीर्थों पर हैं। मल्लीनाथ किसको चाहिए, धर्मनाथ को कौन पूछता है? ये हम मंदिर में पूजा करते हैं ना, पूजा करते हैं तो मैं भी करता हूं कभी कभी श्रेष्ठ के साथ में, तो पारसनाथ, ऋषभदेव, शांतिनाथ, फलाननाथ, इनका विमलनाथ को क्यों छोड़ दिया? कन्या तो सबको करो, अरे चढ़ा दो सबको। नहीं, सबको कहां तक चढ़ाएंगे? तो मैंने कहा देखो एक चढ़ाओ ना, तो बीसों सीधी जे निचन आनंद कंद सही पद जजत हरत भवपंद पावत मोक्ष मही। चला तो झगड़ा है, 24 ही निबट गए कि नहीं निबट गए? नहीं, उनको तो पारसनाथ को, उसको तो मैंने आज तक नहीं छोड़ा, छोड़ना भी मत, नहीं तो संसार में रहेगा कैसे? ये काय का अर्थ कर रहा हूं मैं प्रदीप जी, दब्बत गुणत पद्यत हैं, इन अतिशयों से नहीं पहचानना अनंत भगवान को, समझे ना, अतिशयों से नहीं पहचानना, द्रव्य गुण पर्याय से पहचानना, और द्रव्य में आएंगे गुण तो केवल ज्ञान से पहचानना, अनंत सुख से पहचानना। इसके लिए ये बात लगाई है कि द्रव्य और गुण से पर्याय से उन्हें पहचानो। अब बाकी की चर्चा अपन कल करेंगे, टाइम हो गया है।
अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप।
पांच मिनट के लिए एक निवेदन है कि आप जरा यहीं विराजमान रहें। 38 साल पहले